सकते हैं जी, लेकिन कानून में कहां कहां छेद है जिसका नजायज फायदा उठाया जा सकता है, पूछिए गुनाहगारों से। आज हम कानून की सिर्फ एक धारा की बात करेंगे जिसने कईयों की जीवन धारा उलट दी, भारतीय दंड संहिता की धारा 498। वैसे तो ये कानून की व्यवस्था है किसी महिला को दहेज के मामले में उत्पीड़न से बचाने की, लेकिन अब कई लोग इसे समाज विरोधी बताने लगे हैं। वैवाहिक परंपरा के लिए एक खतरा उसी बात के लिए जो अंतिम संस्कार से पहले आपका आखिरी संस्कार है, एक अनिवार्य व्यवस्था। पेश है आपका क्राइम फाइल 498। जैसे पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसा लगे जब मामला है कुछ ऐसी धारा जिसमें जमानत बना दिया आसान है।
मामला है बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, खाना पीता परिवार,
लेकिन मेरा भी मेरे पैसे को लेकर तकरार। धारा लगा दी गई 498। भुक्तभोगी पति का कहना है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं और अब कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी।
18 जून 1999 ये वो दिन है जिसे भारतीय अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहेगा। इसी दिन उसकी शादी ग्वालियर की बीवी से हुई थी। काफी धूमधाम से हुई थी ये शादी। भारती और बीवी काफी अच्छा वक्त गुजार रहे थे। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और मिलकर महीने में 1.5 लाख रुपए कमाते थे। 4 फरवरी 2003 शादी के करीब 4 साल बाद इसी दिन हुआ था बीवी और भारती का बेटा। शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। बीवी की डिलीवरी अपने मायके ग्वालियर में हुई थी। बच्चा हुआ लेकिन डॉक्टर ने उसे असामान्य बताया, उसे दिल की कुछ बीमारी थी। भारती काफी परेशान रहने लगे। बच्चे के 2 ऑपरेशन भी करवाए, खर्चा आया करीब 4,20,000 रुपए। भारती कहता है कि सारे पैसे उससे ही खर्च किए थे।
रिश्ते बिगड़ते गए, रिश्ते बिगड़ते गए बच्चे के पैदा होने के टाइम पे। और जब जब भी उन्होंने पैसे मांगे तो मैंने दिए, जब उन्होंने पैसे मांगे तो दिए।
अच्छे दिन और बुरे दिन एक स्थिति के 2 बजे ऐसा ही कुछ सोच रहा था केरला में रहने वाला और मुंबई में रह रहा भारती। वो खुद को दिलासा दे रहा था कि थोड़ा वक्त गुजरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। धीरे धीरे वो भी गुजरने लगे थे जिन्हें वो अपनी जिंदगी का सब कुछ मान बैठा था, यानी
26 जून 2003 ग्वालियर से स्वीटी भारती को एक लीगल नोटिस भेजती है। इसमें बच्चे के इलाज में खर्च किए गए 4,20,000 रुपए वापस मांगे जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो सिविल और क्रिमिनल मामले दर्ज करवा दिए जाएंगे। भारती पैसे देने से इनकार कर देता है। अपना मकसद पूरा न होने से स्वीटी प्लॉट और फ्लैट पर अपना दावा जताने लगती है। धमकी दी जाती है कि अगर कब्जा नहीं दिया गया तो लगवा दी जाएगी 498। हुआ भी बस, स्वीटी भारती और उसकी बूढ़ी माँ पर लगवा देती है 498। तारीख है 3 अक्टूबर 2003। अपनी शिकायत में वो खुद के साथ मारपीट करने का इल्जाम लगाती है।
वो कोर्ट में जाके रोती थी कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, जो भी आप बोलना है, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, जो भी होगा।
कई दिनों तक इधर उधर भागने के बाद आखिरकार भारती और उसकी माँ को सेशन कोर्ट में जमानत मिल जाती है। वो खुद पर लगे इल्जाम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करता है, जिसमें वो संपत्ति विवाद के चलते बेवजह 498 लगाए जाने की बात कहता है। आखिरकार भारती की याचिका हाई कोर्ट स्वीकार कर लेता है और फिर आता है फैसला।
हाई कोर्ट ने ये माना कि इट्स नॉट जस्टिफाइबल टू इनिशिएट अ डाउरी के गिवन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। अननेसेसरली अब्यूज कर रही है प्रोसेस ऑफ द लॉ को, अननेसेसरली इनोसेंट लोगों को तंग हो रहे हैं, अननेसेसरी इनोसेंट लोग जो होते हैं वो परेशानी में आते हैं।
हाई कोर्ट में मार खाने के बाद स्वीटी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और एक दिन वो भी अपना फैसला सुनाता है। उस फैसले पर मुहर लगा दी जाती है जिससे भारती और उसकी माँ पर लगाए गए 498 को हटा दिया गया था। जाहिर है बेकसूर साबित होने के बाद भारती काफी खुश है, लेकिन उसे फिक्र है तो बस अपने बेटे की।
बिल्कुल सफर करेगा, अब दीवार पिक्चर में देखिए मेरा बाप चोर है करके कह दिया तो उससे क्या क्या जरूरी थी। आज तो उसपे वही वही समझाया जाएगा ना, कि तुम्हारा बाप चोर है कर, तो वो तो पकड़ कर लेंगे।
पति पत्नी के बीच संपत्ति विवाद में 498 ए के बेजा इस्तेमाल का ये शायद कोई पहला मामला नहीं है, मगर अदालत की सक्रियता से भारती को तो न्याय मिल गया, मगर न जाने कितने और ऐसे मामले हैं जहां गलत मामला दर्ज होने के बाद मुवक्किल कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं।
समाज में फैल रही दहेज की बुराई को रोकने के लिए बनाई गई धारा 498 थी। हर क्षय के साथ बुराई का होना शायद जरूरी है, ऐसा ही कुछ इस गाँव के साथ भी हुआ है। कुछ लोगों को इसका फायदा हुआ है तो कुछ इसके दुरुपयोग के शिकार बने। क्या है धारा 498 की और इसके विरोधी क्या बताते हैं इसमें खामियां?
दरअसल उद्देश्य होना चाहिए दहेज प्रथा को रोकना, लेकिन इस कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग से एक तरह का नया कानूनी आतंकवाद पनप सकता है। इन प्रावधानों का प्रयोग दहेज मामलों में सुरक्षा कवच की तरह हो, न कि उनके हथियार के तौर पर। जस्टिस अजीत वसायत और एच के सेमा की खंडपीठ ने यह बात एक जनहित याचिका को अस्वीकार करते वक्त पिछले साल कही थी। जाहिर है उनकी इस राय में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग को लेकर गहरी चिंता झलक रही है। इस कानून को बनाया तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए गया था, मगर दुरुपयोग के चलते ये उनका ही विरोधी बन गया और अक्सर बेगुनाह सजा पाने को मजबूर हो जाते हैं। आईपीसी की धारा 498 ए एक ऐसा प्रावधान है जिसमें पति या उसका कोई भी रिश्तेदार यदि लड़की को इस हद तक परेशान करते हैं कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए या फिर उसे जीवन के लिए खतरा लगने लगे तो वो कानूनी सुरक्षा हासिल कर सकती है। इस कानून के तहत आरोपी को जुर्माने के साथ 3 साल की कैद या फिर केवल जुर्माना या कैद हो सकती है। इस 498 ए के केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चलते हैं। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी पुलिस को इस मामले में तत्काल FIR दर्ज करनी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है गैर जमानती अपराध। आईपीसी की धारा 498 ए के दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कई बार दूसरे और मामूली विवाद के चलते भी इस धारा का बेशक इस्तेमाल कर लिया जाता है।
मामला कुछ दूसरा होता है और 498 का सहारा है जो लीगल बीपस के रूप में लिया जाता है, जिससे कि मनी एक्सट्रैक्शन किया जा सके और जो मोटिव होता है वुमेन्स का वो उसको सॉल्व कर सके। मोटिव कुछ दूसरा होता है लेकिन 498 का सहारा लिया जाता है।
498 का विरोध करने वालों का कहना है कि चूंकि ये मामला सिर्फ पति के खिलाफ ही नहीं उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी लगता है, इसीलिए इसकी चपेट में कई बुजुर्ग लोग भी आ जाते हैं जिनकी मदद के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। ये भी देखा गया है कि अधिकतर पत्नियां अपने पति के अलावा सास और ननद को भी नामजद करवाती हैं, भले ही वो घर से कितनी ही दूर रहती हो।
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें दहेज के नाम पर महिला कोर्ट में आई, उसने कहा कि दहेज के कारण मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और 498 के अंतर्गत उसने कंप्लेन लॉन्च कराई है, कंप्लेन लॉन्च की हुई है। ऐसे कई मामले आए हैं लेकिन कुछ में ऐसा भी हुआ है कि जजेस ने सख्त हिदायत दी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि आप ध्यान में रखिए कि 498 का मामला भी है कि नहीं है, तो इसमें जो झूठी कंप्लेन लॉन्च कराता है वो भी और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है दोनों को पनिश किया जाना चाहिए जो भी झूठी कंप्लेन लॉन्च करा के अपने परिवार को खराब करता है।
कुछ लोगों की ये भी राय है कि इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी से हटाकर सामान्य अपराध में रखा जाना चाहिए ताकि शुरुआती तफ्तीश के बाद ही मामला दर्ज किया जा सके। 498 ए को जमानती अपराध बनाने की मांग भी कई दिनों से चल रही है ताकि थाने से ही जमानत मिल सके। इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए कुछ छूट देने को लेकर भी काफी आवाज उठी है।
मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई उनके पास पुख्ता सबूत आए तब अरेस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज अरेस्ट नहीं करनी चाहिए। अरेस्ट होने के बाद एक बार अगर हस्बैंड या उनके फैमिली का कोई भी मेंबर अरेस्ट हो गया तो समझौते की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में डाइवोर्स का रेशियो बढ़ रहा है।
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं दिल्ली हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनमें इस कानून पर सवाल उठाए गए हैं। इस वक्त तमाम संगठन भी इस कानून में बदलाव को लेकर मुहिम चला रहे हैं। मुक्त भोगियों का कहना है कि समझौता करने के लिए लड़कियां मनचाहे पैसे की मांग कर देती हैं और इसके लिए कोई पैमाना भी तय नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जब दहेज देने वालों पर कार्रवाई की जाती है तो दहेज देने वालों पर क्यों नहीं। जाहिर है ये सारी बातें इस धारा के मकसद पर सवाल खड़े करती है।
अब तक आप इस धारा के बारे में बखूबी जान चुके हैं, किस्सों की कोई कमी नहीं है। ऐसे इल्जाम लगातार बढ़ रहे हैं, उन्हें जान बूझ कर इसी धारा का शिकार बनाया गया है। अभी बाकी है कुछ और दास्तान। बिहार एक्सप्रेस।